मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं।
ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर धारणा बनाई है। दो शब्दों की वो धारणा है और कल भी बाबा ने मुरली में रिपीट किया, दो चार दिन के बाद वो अवश्य रिपीट हो जाती। लो आपको ध्यान में आ गई होगी। बाबा कहते हैं बच्चे ना दुख दो और ना दुख है दो। तो जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं, मुरली में बार बार बाबा की इस बात को सुनती बदल, तो हम सब बाबा के बच्चों को पक्का हो जाता है कि हमको दुख नहीं देना है। सब अपने अपने संस्कारों को देते हैं, अपनी चेकिंग करना शुरू कर देते हैं, मेरे किसी कर्म से किसी को जरा भी तकलीफ ना हो। हम इसको धारणा में बहुत मजबूत बनते चले जाते हैं। और हम में से बहुत भाई बहन ऐसे होंगे भी जो सारा दिन में कभी किसी जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरी धारणा भी है, दुख देना नहीं है लेकिन दुख लेना भी नहीं है। तो हम देते तो नहीं है लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि ले लेते हैं। इसमें इतने पक्के नहीं हैं हम, इसमें अभी कच्चे हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि ले अमुक व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, उसने दिया पर हमने लिया। देने वाला दोषी है तो लेने वाला भी दोषी, देने वाले को नहीं लेना चाहिए था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति दुख दे रहा है अपन ने वो क्यों दे रहा है। देखो जैसे एक मटका है, उसमें ना पानी थोड़ा सा पानी डाला तो मटके से बाहर नहीं निकलेगा ना। अच्छा आधा भी भर दिया तो भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उस मटके में इतना क्या पानी है कि वो ऊपर तक भर गया, फिर क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मटका जो करे उसके पास पानी उसमें समाने की शक्ति से ज्यादा है तो बाहर तो निकलेगा ही। तो दुख अनाथ दे रहा है वो बेचारा क्या करे, उसके पास दुख इतना ज्यादा है कि वो बाहर उबल उबल करके जैसे दूध को उफाता है, जैसे बाहर उफन उफन करके आता रहता है। उसका दोष नहीं है, भरा हुआ अंदर दुख, मटका फुल है, इतना है कि बिना मांगे वो उस दुख का दान करता रहता है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम उसके उस मटके को खाली करने की कोशिश करें, उसका दुख खत्म करने की कोशिश करें। जड़ी खत्म हो जाएगी तो वो देना भी बंद कर देगा आने में। लेकिन हम क्या करते हैं, खत्म करने की बात छोड़िए, हम तो ले लेते हैं। पहले वो दुखी था फिर उससे लेकर के हम भी दुखी हो गए, तो हमने तो बड़ा हाँ सहयोग दिया, घटाने में तो सहयोग नहीं दिया। इसलिए जो व्यक्ति दुख दे रहा है मन वचन कर्म से, उसके भीतर भरा हुआ है ये सोच करके उसके लिए। और जो रहम की दृष्टि अपनाओ, ये बेचारा रहम का पात्र है, इसके पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं जो ये दे, तो मैंने तो है वही तो बेचारा देगा। और कई बार हम ऐसी शिकायत करते हैं कि देखो फलाने व्यक्ति को उसके इतना किया, उस पर इतना परोपकार किया, उसको मैंने मकान बनवा के दिया, मैंने उसके बाल बच्चों की पढ़ाई में सहयोग दिया, मैंने उसे बहुत नौकरी लगवाई। लौकिक रीति से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है विभिन्न प्रकार से, स्तोत्र लोग भूतों की करते हैं, कोई मित्र की करता है, कोई भाई की करता है, कोई पड़ोसी की करता है, लेकिन जब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं? देखो मैंने इतना किया और इसने तो कुछ भी नहीं दिया। तो यहां भी वही मटके वाली बात लागू होती है। वो देना कब शुरू करेगा? जब वो भरेगा। आपने जो दिया वो तो उसकी अभी तली में ही है, नहीं आई अभी तक, तो वो आधा भी नहीं हुआ है। आप समझते हो मैंने बहुत दिया, मैंने बहुत दिया, लेकिन उस बेचारे की तो अभी आधा तक भी नहीं किया वो मटका तो अभी, क्योंकि वो बहुत खाली था, बहुत अभावग्रस्त था। आपने उसको जरा सा दिया तो उससे उसके अभाव मिटे थोड़े। और देना वो कब चालू करेगा? जब वो अभाव मिट जाएंगे, जब वो पूरी तरह से भरपूर हो जाएगा। आगे इसलिए किसी की मदद करके, किसी को सहयोग दे करके, किसी को किसी भी प्रकार से भरपूर बढ़ा करके तुरंत ये कामना मत करो कि ये मुझे वापस देवे। वो देगा अपने समय पर, देगा भरपूर होने के बाद। कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी कर्म करके ज्यादा उसके बाद सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं ऐसे नहीं, ऐसे करता तो करना अच्छा होता, सोचते रहते हैं। सोचना या कर्म बीज को ना, एक बीज के समान है। जैसे बीज बो दिया हमने, कर्म किया मैंने, बीज बो दिया। अब मान लीजिए अपन उखाड़ उखाड़ के देखते रहे, नहीं मैं इसको इधर बोता तो अच्छा था, नहीं मैं इधर बोता तो अच्छा था, नहीं मैं इधर बोता तो अच्छा था, थोड़ी देर में फिर लिया तो था। ऐसे बीज का कितना फल निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो हमने कर्म किया और थोड़ी देर में उसको फिर उखाड़ रहे हैं, नहीं मैं ऐसे नहीं करता तो अच्छा, ऐसे नहीं करता तो अच्छा था, ऐसे नहीं करता तो अच्छा था, तो उसका कितना फल निकलेगा? उसका फल निकलेगा ही नहीं, पानी तो हमने डाला नहीं। तो जो कर्म हमने कर दिया, जैसे लौकिक दुनिया में कई बार हंसी हंसी में कहते हैं ना, कोई व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, अब बन गया, मेरा मन तो इंजीनियर बनने को करता था। तो भाई तू डॉक्टर तो मन से बना नहीं, इंजीनियर तू बन नहीं सकता, तो तू दोनों से ही गया, नहीं डालो। इसलिए जो बन गया उसी में खुश रहे ना। तो जो कर्म हमने कर लिया उस कर्म को शुभ भावना का पानी भी पो, जो हो गया वो बहुत अच्छा, उसका अच्छा फल निकले, वो कर्म जिसके और प्रति हुआ उसको सुख मिले। ये है पानी डालना, ये है शुभ भावना देना, जिससे वो बीज अवश्य फलीभूत होगा, ये उसका फायदा निकलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सारी दुनिया है ये वैरायटी दुखों का सुपर बाजार है। सुपर बाजार में क्या होता है, वैरायटी चीजें होती हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो यहां भी समझती थी ना, हमने कभी देखी ना हमने कभी सुनी, ऐसी ऐसी दुख की बातें हैं। अब एक व्यक्ति तो समझदार है, वो कर्षिता है, सुपर बाजार सिर्फ देखने के लिए है, मैं देखता हुआ निकल जाऊंगा, मुझे लेना कुछ नहीं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो चीजों पर तो के अनचाही चीजें खरीद लेते हैं, बाद में जाके कहते हैं अरे बहुत पैसा खर्च हो गया है, तो खरीदनी नहीं थी। तो ऐसी जो बाबा के समझदार बच्चे हैं वो तो इस सुपर बाजार को कैसे क्रॉस करते हैं, साक्षी होके देखते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे बहुत भोले हैं, जिनको बाबा कहता है बच्चे भोले बनो पर माया के भोले मत बनो, पर वो माया के भोले बन जाते हैं। बहुत वो कहते हैं दे तो रहा है ले लेता हूं, तो वो दुख को ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कहां था दुख है दुनिया में, दुनिया तो दुखों से भरी पड़ी है, इस दुनिया में तो इतने दुख है, हम तो दुखी हो गए इस दुनिया में। भाई आपको लेने के लिए किसने कहा? और आप साक्षी होके देखते ना, आपको छूता ही नहीं दुख। इसलिए बाबा ने हमको कहा बच्चे कीचड़ में रहते कमल के समान रहो, कि पानी में जैसे नाव रहती है ऐसे तैरने की छुट्टी है, पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए, ऊपर ऊपर रहो, लेकिन संसार नैतिकता आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, आप उसके बारे में सोचते ही क्यों? वो कबीर दास जी की बात है ना, जो वो घर से निकलता था तो एक कसाई की दुकान थी, बेचारा रोज दुखी होता था, देखो ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, ग्लानी कैसा इसका कर्म है, रोज उसको देख देख करके उसको परेशानी होती थी, उसका जी दुखता था, उसके मन को बड़ी ग्लानी होती थी, कर्म वो कर रहा है तेरी उसको होती थी। लंबा समय गुजर गया, आखिर एक दिन उसको सद्बुद्धि आई। क्या सद्बुद्धि आई? कि कभी रात झोपड़ी गलकटियन के पास करणगे सो भरणगे तू क्यों भया उदास। जो करेगा ये किसी को तो मिलेगा ना, भी तू क्यों उदास होता है, तू साक्षी होके देख इसको और अपना काम कर। अगर इस बीच में इसका चिंतन करेगा तो तेरे को भी पाप का असर आ जाएगा, लेकिन तू साक्षी होके देखेगा तो तू न्यारा रहेगा, पाप से तो नहीं मुक्त रहेगा। इसलिए पाप करना तो नहीं है, लेकिन पाप को देखना भी तो नहीं है, देखना माना उसका चिंतन भी तो नहीं करना, उसमें बुद्धि को इन्वॉल्व भी बाबा करना है, ये क्यों करता है, ये क्या करता है, ये किस लिए करता है, ऐसे सोचा तो भी थोड़ा मोड़ा हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा चिंतन से भी परे, क्यों क्या कैसे के चिंतन से भी परे। तो एक कारण तो ये है कि दूसरा काम दूसरे के कर्मों को देख करके दुख ले लेते हैं, चिंतन करते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरी समरण है अनुमान लगाते हैं, है नहीं बात लेकिन अनुमान लगाते हैं। सांप को रस समझ लेते हैं, काली चीज को भूत समझ लेते हैं। कोई लोग आपस में दो बात करते हैं तो सोचते हैं मेरे बारे में ही बात हो रही है। चीज अनुमान लगाते हैं, जिसका डेफिनेट पता नहीं है उसके बारे में सोचना भी गलत है। जैसे बाबा कहते बच्चे शास्त्र कैसे बने, अनुमान लगा लगा के ही तो बने ना, ऐसे हुआ होगा फिर ऐसे हुआ होगा फिर ऐसे हुआ होगा राम का। तो अनुमान नहीं लगाना, अनुमान लगाने से फिर रामायण बन जाती है। मंथरा ने अनुमान लगाया भरत गद्दी पर बैठे फालतू गद्दी पर बैठेगा, फिर केकई की इज्जत कम हो जाएगी, फिर भरत को उसका दास बनना पड़ेगा, हैं फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। आपका अनुमान था ना, सच्ची बात तो नहीं थी ना, राम तो ऐसा था ही नहीं कि वो गद्दी पे बैठे तो किसी माँ की कदर कम करे, लेकिन बात लेकिन ये छोटी बुद्धि का अनुमान था। तो जब हम अनुमान लगाते हैं ना तो बहुत महान आत्मा के बारे में भी बहुत छोटा बाबा सोच लेते हैं, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है, फायदा होना चाहिए होता है वो नहीं होता। तो बने का अनुमान नहीं लगाओ, जो अनुमान लगाएंगे वो हनुमान नहीं बनेंगे। हनुमान माना उड़ने वाला, वो उड़ेगा नहीं, अनुमानों की जाल में उलझा रहेगा। और तीसरा कारण क्या है? पूर्व जन्मों के कर्म, वो भी दुख का कारण है। जिनको बाबा कहता है बच्चे 63 जन्मों का हिसाब किताब है, हमने देखा नहीं है, और किन ज्ञान से महसूसता तो आती है ना, कि मेरे सामने जो बात आई है वो मेरे किसी कर्म का हिसाब किताब है। पुराने उसको खत्म करने का तरीका है मेरे ही श्रेष्ठ कर्म, मैं जितने अधिक श्रेष्ठ कर्म करूंगा उतने ये मेरे पास किया हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही कहूंगा मेरे सामने ये बात क्यों आई, मेरे सामने ये क्यों आई, मेरे सामने ही क्यों आई, तो एक तो पहले योग ऊपर से अभी जो कर रहा हूं वो तो डबल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कर्म भोग को कर्म से चुकतू करो। जैसे एक बार एक माता को कैंसर हो गया, तो वो बहुत अच्छी समझदार थी, तो उसने कहा जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे बहुत फायदे हो गए। तो उससे पूछा, भाई कैंसर से तुझे क्या फायदे हो गए? तो उसने कहा कि कैंसर होने से पहले करती मैं न तो जिंदगी की कदर थी मेरे लिए, न समय की कदर थी, न शरीर की कदर थी। समय को भी बर्बाद जीवन की थी, शरीर की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब कैंसर का मालूम पड़ा तो मुझे समझ में आया ये जेकिन इतना कीमती है। और उसी दिन से मैंने अपना पुरुषार्थ बहुत तीव्र कर दिया। शरीर मेरा रोगी हो गया, आत्मा मेरी स्वस्थ हो गई। पहले शरीर स्वस्थ था लेकिन आत्मा रोगी थी, उलट गया। और दूसरी बात, मेरे को हमेशा ये रहा, एक सेकंड, ये सेकंड जैसे था ये तो बहुत कीमती था। और मेरा मनोबल बढ़ गया, पहले मेरे में सहनशीलता नहीं थी, लेकिन ये बीमारी आई, जैसे मैंने जीवन की कीमत समझी तो मेरा मनोबल बढ़ गया। घर वाले लोग कहने लगे, देखो इसमें कितनी सहनशीलता, इसको कितनी तकलीफ है जीवन की, फिर भी ये कितना आराम से इसको सहन कर रही है। तो मेरी आत्मिक शक्ति बढ़ी, तो दो फायदे हो गए, जीवन की कीमत को पहचाना, आत्मिक शक्ति बढ़ गई। तो जब हम कोई भी परिस्थिति आती है उसको पॉजिटिव लेंगे तो हिसाब किताब चुकतू होगा, और जब उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो वो और ज्यादा घटना उलझ जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे किसी भी को देख करके, बात को देख करके हमेशा उसको कल्याणकारी समझो, वो मेरे लिए कल्याण के लिए आई। खाने में हमने कुछ दिन पहले ज्ञानामृत में एक कहानी डाली थी, आपको याद होगा। एक व्यक्ति एक कारखाने में काम करता था, तो एक दिन उसके शहर में प्रवचन करने वाला कोई महात्मा आया, तो उसने सोचा मेरा कारखाना तो 10 बजे शुरू होता है, तो मैं पहले 8 से 9 बजे प्रवचन सुन सारेता हूं और वहीं से फिर सीधा कारखाने में चला जाऊंगा। तो वो तैयार होके जल्दी 8 बजे प्रवचन स्थल पे पहुंच गया। बहुत हुआ, लोग बैठे थे, दरी बिछी हुई थी, वो वहां बैठ गया। भीड़ बहुत थी, प्रवचन चालू हुआ। महात्मा जी ने प्रवचन में यही कहा, जो उठने लगा वो भी कल्याणकारी, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी, जो भविष्य में होगा वो भी कल्याणकारी। तो सुना एक घंटा, बहुत अच्छा लगा। उठे लगा, भीड़ बहुत थी, जल्दी जल्दी कारखाने पहुंचू निकलू, तो वो बटुआ था ऊपर की जेब में, वो गिर गया। उसमें 100 रुपए गिर गया, और जैसे ही पंडाल से बाहर निकला, सामने सिगरेट वाले का खोखा था, रोज उससे सिगरेट खरीदता था राजोग। उसको देखते ही ख्याल आया, बटुआ देखा, बटुआ तो है ही नहीं, तो सोचा जाने दो ना, जब पैसा ही नहीं है तो सुबह सुबह उधार क्या लेना, ये भी नाराल्टियां का पहला ग्राहक आया वो भी उधार मांग रहा है, जाने दो आज। तो बेचारा बिना सिगरेट के ही कारखाने चला गया। वहां वो बनाने उसने का काम करता था, लोहे की बाल्टियां। अब सिगरेट पीने में भी बीच में 5 मिनट 10 मिनट तो लगते थे उसके। अब उसने क्या चाह किया, ना पीना है ना बीच में बैठना है, तो बाल्टियां बनाने में लगा रहा। बाकी दिन आया, 4 बाल्टियां बनाता था, और उस दिन एक रस कुछ प्रवचन का असर, कुछ बीच में वो टाइम नहीं गंवा बूझी, तो उसने 6 बाल्टियां बना दी। दोपहर में छुट्टी के समय उसका बेटा आया, बोला मेरे को मेरी बहन के पास जाना है, किराए का पैसा चाहिए। बाबू गरीब आदमी था, घर में तो पैसा होता नहीं था, बाबूजी की जेब में ही होता था। तो उसने कहा बेटा आज तो पैसा है नहीं, कल चले जाना भी पर। तो वो लड़का भी वापस लौट गया। शाम के टाइम उसका मालिक आया। मालिक सर्वचन सुनने गया था तो उसको एक बटुआ मिला, उसमें 100 रुपया था। मालिक पर भी प्रवचन का हो जाएगा। उसने सोचा मैं तो अमीर आदमी हूं, 100 रुपए का क्या करूंगा, मैं अपने कारखाने के मेहनती आदमी को आज ये 100 रुपया इनाम में दे दूंगा, दान का दान को, और पैसा भी मैं नहीं रखूंगा, उसका भी मेरे पे भार नहीं चढ़ेगा। तो गया मैनेजर को पूछा सबसे ज्यादा मेहनती आज, बोला बाकी दिन की तो मैं कह नहीं सकता, आज ये आदमी है, बाकी दिन 4 बाल्टी बनाता था, आज इसने 6 बाल्टियां बनाई, ने कहा आज का तो सबसे ज्यादा मेहनती यही है। तो बोला ठीक है मैं 100 रुपया इसको दे देता हूँ। 100 रुपया उसको इनाम दे दिया। उसकी चिंता देखो, महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था जो होता अच्छा होता, सचमुच मेरा 100 रुपया गिरा और मैंने उसका नहीं की। एक तो मैंने सिगरेट सारा दिन नहीं पी, अगर मैं एक दिन रह सकता हूं तो सदा रह सकता हूं, बराबर हो, ये भी मेरे में ताकत आई, मैं नहीं पीऊंगा। मेरा 100 रुपया गुम गया था, मुझे 100 रुपया इनाम मिल गया, वो भी बैलेंस हो गया, और मेरा टाइम बीच में खराब नहीं हुआ, तो मैंने 4 की जगह 6 बाल्टियां बनाई, कारखाने में मेरी इज्जत बढ़ गई। भाई 4 से 100 रुपया मिलना और इनाम में मिलना बहुत बड़ी बात है। ऐसे सोचते सोचते घर आ रहा था तो घर में समय मैंने मिला कि लड़का जिस बस से जाना चाहता था वो वाली बस एक्सीडेंट हो गई थी। तो बोला देखा ना जेब में पैसा था ना लड़के को दिया, अगर देता तो उसके साथ ट्रेजडी हो जाती, तो आज बटवा क्या गिरा भलाई भला हो गया सारे। तो देखने में क्या हुआ था, नुकसान हुआ था ना, लेकिन उस नुकसान के पीछे कई फायदे हो गए। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे कई बातों में देखने में नुकसान नजर आते हैं, लेकिन पर्दा उनके पर्दे के अंदर कई फायदे छिपे होते हैं। वो जब पर्दा उठता है तो फायदा नजर आता है, और अगर कल्याण पर नहीं उठाते हैं तो सामने सामने नुकसान देख करके दुखी हो जाते हैं, लेकिन छिपा हुआ बहुत कुछ है। अच्छा कार्य संगम युग में तो सब कुछ कल्याणकारी है। कोई कहता है बाबा मैं बहुत गरीब हूं उनका, तो बाबा ने से क्या कहता है, बहुत है बच्ची, गरीब हो तो बहुत अच्छा है, गरीबों को तो भगवान बहुत प्यारा लगता है, कहते हैं ना गरीबानु लग साहिब प्यारा। कोई कहता बाबा मैं बहुत अमीर हूं, तो बाबा कहता बहुत अच्छा है बच्चे, अमीर हो तो अपना धन बचा करके यज्ञ में लगाओ, दुनिया के अमीरों का पैसा तो देखो कहां जाता है, दुनिया में भी बहुत अमीर है लेकिन कहां जाता है पैसा, उस वो पैसा उन्हीं को उलझा लेता है, वो पैसा ही उनके दुख का कारण बन जाता है, वो बेचारे उस पैसे से ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा भी अमीर था, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सतयुग की बादशाही प्राप्त कर ली, तो ऐसे ही अगर आप अमीर हो तो आप भी सतयुग की बादशाही प्राप्त करो, कखवन दे के लखपन ले लो। कोई कहता बाबा मैं बूढ़ा हो गया हूं अब मैं क्या पुरुषार्थ करूंगा, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा बाबा भी तो बूढ़ा ही था ना, जब शिव बाबा इनके तन में आए तो ब्रह्मा बाबा कितने साल के थे, 60 साल के थे, दुनिया में 60 साल वाले को क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो गया है, आया 60 लागी लाठ, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन शिव बाबा ने तो सृष्टि स्थापना का कार्य ही 60 साल वाले बुजुर्ग से करवाया, तो अच्छा है ना, जो बुजुर्ग हैं वो बाबा के हमजिन्स। कोई कहता है बाबा मैं तो बहुत बच्चा हूं, अभी छोटा हूं, और अभी अभी से अभी मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, अच्छा है संस्कार बिगड़ने पहले ही बाबा के पास आ गए। लोग तो बिगड़ने के बाद सुधारने की कोशिश करते हैं, आप बिगड़े ही नहीं, अच्छा है पवित्र फूल बाबा के पास आ गया। कोई कहता है बाबा मैं अनपढ़ हूं, मैं आपके लिए क्या करूंगा, तो बाबा क्या कहते हैं, मैं तो पढ़े लिखों को भी कहता हूं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, अच्छा है तुमको भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम कोरा कागज हो, तो कोरे कागज पे जो भी बाबा लिखेगा ना वो तुरंत लिखा जाएगा, जिनका बहुत लिखा हुआ है उनको तो मिटाने की मेहनत करनी पड़ती। कोई कहता है बाबा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, उसके लिए भी बाबा के पास उत्तर है, क्या उत्तर है, बच्चे दुनिया में बहुत बहस करने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो ये समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो ऐसे ही लोग आते होंगे, कौन उनके उनको संतुष्ट करेगा, तो अच्छा है पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखों को संतुष्ट करो, प्रभावित करो, उनको बाबा के बच्चे बनाओ। कोई कहता है बाबा मैं गरीब गांव का हूं, तो बाबा क्या बोलता है, गांव के भोले ढोले बच्चे तो भगवान को बहुत प्रिय हैं, अन्नदाता हैं, मेहनत करके अन्न उगाते हैं और सारा संसार उस अन्न को खाता है। अगर वो बच्चा बाबा की याद में अन्न उगाए जो भी करे, तो हम तो बनाने के बाद ब्रह्मा भोजन बनाते हैं उसका तो कच्चा ही ब्रह्मा अन्न हो गया, ब्रह्मा भोजन तो बाद में बनेगा, पहले ही ब्रह्मा अन्न हो गया। और जो भी उस अन्न को खरीदेगा इनडायरेक्ट रूप में उसको बाबा की दुआ मिलेगी, शुभ भावना मिलेगी। तो जो भी बाबा का बच्चा है बाबा के लिए अमूल्य रत्न है, हीरा है, बाबा ने कहां कहां से ढूंढ ढूंढ करके उसको निकाला है, उसकी विशेषताएं विश्व कल्याण में लगनी है। और वो जब विश्व कल्याण में लगेंगी तभी विश्व परिवर्तन होगा, जैसे सबने उंगली लगाई थी ना गोवर्धन पर्वत उठाने में, तो ऐसे सबकी उंगली लगनी है, एक की भी उंगली नहीं लगेगी तो बाबा कहते हैं नहीं वो भी लगनी जरूरी है। जैसे मशीन होती है ना उसमें छोटी सी कील का भी बड़ा महत्व है। एक वो बात सुनाते हैं कि एक राजा युद्ध में हार गया तो उसका कारण ढूंढा गया, भाई युद्ध में क्यों हारा, तो बोला जब घोड़े को एड़ लगाई तो वो आगे नहीं चला। भाई घोड़े को एड़ लगाई तो आगे क्यों नहीं चला, उसकी काठी ठीक नहीं कसी थी। काठी कसने वाले को बुलाया गया तो काठी कसने वाले ने काठी में भी काठी क्यों नहीं कसी थी, तो उसने अपने सर्वेंट को बुलाया तो वो जो सर्वेंट था उसको एक छोटी सी कील नहीं मिली थी, तो कील न मिलने के कारण राजा युद्ध हार गया। युद्ध हारने का कारण क्या निकला, एक छोटी सी कील को ठीक से कसा नहीं गया था। तो छोटी कील भी इतनी महत्वपूर्ण है। तो बाबा के इस यज्ञ में हर आत्मा अपनी अपनी जगह बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं बच्चे जो अपने महत्व को समझ करके स्वमान में रहता है और दूसरों को भी ऊंची दृष्टि से देखता है, जो खुद स्वमान में रहेगा ना वो दूसरों को तो मान देगा ही देगा। जैसे कहते हैं कि एक बार एक गुरु के दो चेलों में आपस में झगड़ा हुआ, एक चेले ने कहा मैं बड़ा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा, तो गुरु के पास गए तो गुरुजी ने कहा, फैसला गुरुजी से करवाना था, तो गुरुजी ने कहा कि जो दूसरे को बड़ा कहे वही बड़ा। तो बड़ा कौन, जो दूसरे को बड़ा कहे, दूसरे को बड़ा समझे। तो स्वमान में कौन, जो दूसरे को मान दे, माना वो स्वमान में है, हमें मिले। और जो स्वमान में रहता है उसको कभी फीलिंग नहीं आती, उसकी भावनाओं को कभी चोट नहीं लगती, उसका दिल कभी नहीं दुखता। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, मेरा दिल टूट गया, मेरी भावनाओं को बड़ी चोट लगी, ये दे अभिमान के शब्द हैं। जो स्वमान में रहता है उसकी ऐसी भाषा नहीं होती, उसके ऊपर तो कुछ भी हो जाए, उसको तो दिल जोड़ने वाला मिल गया ना, अब उसका दिल टूट नहीं सकता, उसकी भावनाएं हर्ट हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी भावनाएं इतनी पवित्र हैं और शिव बाबा परम पवित्र से जुड़ी हुई हैं, तो उनको कोई, उनके बीच में कोई दरार आ नहीं सकती। तो कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो हिलेगा नहीं, स्थिर रहेगा, अनशेकेबल, स्थिर। और जो यहां स्थिर रहेगा वही सतयुग में जाकर के अचल अडोल स्थिर राज्य का मालिक बनेगा। जो यहीं हिल रहा है तो वो वहां भी सिंहासन पे घड़ी घड़ी हिलता रहेगा। तो हमको अडोल बनना है ना। इसके लिए फिर हम उसी बात पर आते हैं, किसी भी परिस्थिति में दुख लेना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की एक बहुत अच्छी बात सुनाती हैं, नाम सुना है ना अपने, कलकत्ता के भाई बहन बैठे होंगे, वहां तो उनका बहुत फेमस है। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे रामकृष्ण परमहंस, उनके जीवन की एक घटना सुनाती हैं। ये जो सन्यासी लोग थे, ये लोग तो भिक्षा मांगने जाते हैं, तो एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए कहीं पे गए, तो एक माता थी, वो घर में पोचा लगा रही थी और उसकी बहू पीहर चली गई थी झगड़ करके। वो बुड़बड़ा भी रही थी कि मेरी ये उम्र कोई काम करने की है, देखो वो चली गई है और अब मैं कैसे ये सारा घर संभालूं, ऐसे बुड़बुड़ा रही थी, दुखी थी बेचारी। तो इतनी देर में उसने बाहर से आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। तो वो दुखी तो हो ही रही थी, उसने कहा मैं घर नहीं संभाल सकती, एक और आ गया। और उसी बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते उसके हाथ में पोचा था ना, उसने वो उठा करके उसकी झोली में डाल दी। अब जिसको भिक्षा मिली उसने क्या समझा, भगवान ने जो दिया बहुत अच्छा दिया, वो यही समझते हैं ना, जो मिला भगवान का दिया है, उसको लेकर के आ गया, आकर के उसको निचोड़ा, सुखाया। पुराने जमाने में तो मोटे कपड़े हाथ से काते हुए होते थे, मोटा मोटा सूत होता था, सुखाया और उसके तार तार निकाल लिए, तार निकाल के उसका बट खोल लिया, बट खोल करके उसको वापस कोटन बना दिया। और कोटन बना के भगवान के आगे जो दीपक था उसमें वो कोटन की बाती बना करके जला जलाने लगा, यूज किया उसको, क्योंकि ये नियम होता है संन्यास का कि जो भी भिक्षा में चीज मिलेगी उसको सफल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना। वो एक प्रकार से गृहस्थी को निमित्त बना करके भगवान ने दिया है, उसका निरादर नहीं करना, उसको फेंकना नहीं। मुझे एक और सन्यासी ने भी सुनाया था कि मुझे एक बार किसी ने भिक्षा में आलू दे दिए थे, और आलू भी वो जिनको हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, थोड़े थोड़े अंकुर निकल आते हैं, तो वो तो हरिद्वार का सन्यासी था, उसने सुनाया था। तो बोला हम लोग खाना तो बनाते नहीं है, तो मैं उन आलुओं का क्या करूं। तो मैंने क्या किया, गंगा के किनारे की जो रेती थी उसमें आलुओं को डाल दिया और वो बहुत सारे आलू हो गए। तो जो गंगा किनारे लोग आते थे गृहस्थी, उनको मैंने वो आलू फ्री में थैले भर भर के दिया। तो भिक्षा की चीज को व्यर्थ नहीं गंवाना, ये नियम होता है। तो उसने भी उसका क्या किया, वो रुई बना ली और बाती जलाई, आधा टुकड़ा रखा झोपड़ी में, आधे टुकड़े की बाती बना ली। एक दिन कोई प्रोग्राम था या कुछ था तो वो बुढ़िया भी गई वहां पे, फंक्शन रखा होगा, लोगों को बुलाया होगा, कोई जैसे होती है ना गुरु पूर्णिमा आदि आदि के समय कोई भी होगा, तो वो बुढ़िया गई, उसने पहचान लिया कि ये कपड़ा तो मेरे वाला ही है। तो उसको आया कि भाई ये तो मैंने उस दिन दिया था, पूछा, बड़े से तो नहीं पूछा, किसी छोटे से पूछा। उसने कहा जी ये तो हमको भिक्षा ला और इसकी तो हम रुई की वो बना करके जलाती हैं। तो बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैंने तो गुस्से में दिया था, अपमानित करने के लिए दिया था, बुड़बुड़ाते हुए दिया था, और इसको भी भगवान का प्रसाद बना लिया। तो वो गई और उसके चरणों में बैठ गई, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मेरे से बहुत गलती हो गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य आया कि ये बुढ़िया कौन सी गलती की माफी मांग रही है। तो बोला आपने क्या गलती की है। तो उसने वो घटना याद कराई। तो बोला नहीं, हम तो जो मिलता भगवान का प्रसाद मानते, हमको तो भगवान का प्रसाद मिला था और हमने उसको सफल कर लिया, इसमें हमारी महानता क्या है, महिमा क्या है। हमारे तो नियम है संन्यास के, जो नियम है मैंने उसी का तो पालन किया है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी किया है। तो बुढ़िया और हैरान हो गई कि एक तो मेरे प्रति इसके मन में ग्लानी नहीं है और दूसरा इतना महान कर्म करके भी इसको जरा भी अपनी महानता का भी एहसास नहीं है, तो इसे नॉर्मल कर्म मानता है। मेरे पाप को इसने पुण्य में बदल दिया, मैंने क्या किया था, गुस्से में चीज दी लेकिन उसने तो उसको भी वरदान बना ली। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 108 की माला में कौन आएंगे, जो दुख को सुख में बदलने की कला जानते हैं, जो दूसरे के पाप को भी पुण्य बनाना जानते हैं, जो दूसरे की गलतियों को भी अच्छाई में परिवर्तित करना जानते हैं, जिसके अंदर ये कला है वो किसी तूफान से रुक नहीं सकता, उसके रास्ते में कोई बाधा आ नहीं सकती, उसको माया नहीं आ सकती, क्योंकि वो परिवर्तन करना जानता है, उसके अंदर ये कला है हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना लेना और फिर उसके कारण महिमा भी नहीं स्वीकार करना, उसका नेचुरल कर्म है ये। हर घड़ी हर पल बुराई को अच्छाई में बदलने में जैसे वो निपुण है, तो ऐसी आत्मा को क्या होगा, अच्छाई तो अच्छाई है ही, बुराई आ गई उसको भी अच्छाई में बदल दिया, मैंने चित भी उसकी पट भी उसकी, वो तो दोनों तरह से जीतेगा, हार में भी उसकी जीत है और जीत में भी उसकी जीत है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे इतने स्ट्रोंग होने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बात में कोई भी चीज उनको हिला ना सके, तभी तो उनकी जीत होगी, क्योंकि बाबा को मालूम है बातें तो आएंगी, जब से स्थापना हुई तब से लेकर के अभी तक भी आ रही हैं। देखिए पहले बाहर वालों का विरोध होता था, अभी बाहर के लोग तो इतना विरोध नहीं करते, लेकिन अब हमारे अपने स्वभाव संस्कार, हमारा अपना सर्कल, हमारे अपने मित्र संबंधी, हमारे अपने शरीर के हिसाब किताब, बहुत सारी बातें हैं वो आती हैं, वो सूक्ष्म रूप धारण करके आती हैं, तो उनको भी जो खुशी खुशी पार करे वो विजयी बनेगा। अगर पार करने में समय वेस्ट गया तो भी नंबर कम होते हैं, पार तो किया पर कितनी देर लगा करके पार किया। अब जैसे एवरेस्ट पे चढ़ने में एक तो चढ़े आधे समय में, एक चढ़े दुगने समय में, फर्क तो होता है ना। तो बिना समय गंवाए परिस्थिति को पार कर लिया, उसके नंबर ज्यादा मिलते हैं। इसलिए परिस्थितियों का आह्वान कीजिए, माया का आह्वान कीजिए, जैसे जो एक्सपर्ट खिलाड़ी होता है ना वो आह्वान करता है बॉल का, मेरी तरफ आए मैं कैच करूं, डरता नहीं है ना, ना मैं इस कोने में खड़ा हो जाता हूं, दूसरे की तरफ आए क्या पता कैच की जाएगी कि नहीं की जाएगी, कहीं गिर ना जाए, मेरा ना नाम लग जाए, नहीं, वो कहता हर बार मैं ही कैच करूं, मेरे पास ही आए। तो ऐसे ही कुछ भी आए, कैसी भी बात आए, परिस्थिति आए, हम एवर रेडी, ऐसी हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और आंतरिक स्थिति मजबूत कैसे बनती है, शरीर मजबूत कैसे बनता है, बहुत अच्छा खिलाओ पिलाओ एक्सरसाइज करो, दो बातें हैं ना, खिलाओ बढ़िया और एक्सरसाइज कराओ। तो आंतरिक स्थिति भी मजबूत तब बनती है जब उसे खिलाओ पिलाओ बढ़िया में ना, ऊंचे विचार, हाई थॉट्स। और सबसे बढ़िया हाई थॉट्स कहां से मिलेंगे? मुरली से मिलेंगे। तो बार बार जब उनकी चर्निंग करती है ना, तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। और एक्सरसाइज कौन सी? योग की एक्सरसाइज, आना और जाना, पांव हमारे फर्श पे, मन हमारा अर्श पे, चलते हुए भी लगे जैसे भले निमित्त मात्र धरती पे चल रही हैं, लेकिन हम ऊपर हैं, धरती से ऊपर हैं, न्यारे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अल्लाह लोग हो, दुनिया से न्यारे हो। तो ऐसे देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी उसके प्रभाव में नहीं आना, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए भी कर्म का उतार चढ़ाव, बहुत सारी बातें आती हैं, संगठन में आना है, लोगों से मिलना जुलना है, मिलजुल करके काम करना है, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, आप जैसे कहेंगे दूसरा उस प्रकार से नहीं करता है। नहीं, कल की मुरली में बाबा ने एक लाइन में सारे ज्ञान का सार बताया। कौन सी लाइन में बताया? अब घर जाना है। इतना ज्ञान बाबा ने सुनाया है इतने वर्षों से, लेकिन सारे ज्ञान को अगर एक लाइन में सुनाए तो क्या कहेंगे? अब घर जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? उपराम अवस्था, योगी की अवस्था, उसको सम अवस्था भी कहती है, उपराम अवस्था भी कहती है। जो सम होगा वही उपराम हो पाएगा, जो उपराम होगा वही सम अवस्था, यानी लाभ दुख सुख सब चीजों में एक समान। जैसे कई बार कहते हैं भाई फलाने ने मेरी ग्लानी कर दी, मेरे बारे में कुछ बोल दिया, मेरे को बहुत मन में विचार चले, मेरी खुशी गुम हो गई। इसके लिए बाबा बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, जैसे गुलाब का पौधा है तो उसकी जड़ में हम क्या डालते हैं? उसकी जड़ में तो बहुत बदबूदार खाद डालते हैं, लेकिन गुलाब का पौधा क्या करता है? इतनी बदबूदार खाद को लेकर के और बदले में खुशबूदार फूल देता है। सबसे ज्यादा ऐसी खाद उसी की जड़ों में डाली जाती है, बाकी सारे पौधे तो फिर भी कम खाद से पनप जाएंगे, लेकिन गुलाब को बहुत सारी खाद चाहिए। अब अगर गुलाब कहे नहीं भाई मेरी जड़ों में तो कोई खुशबूदार चीज डालो, मैं तो ये ऐसी बदबू वाली चीज मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या होगा? वो गुलाब बढ़िया खुशबूदार फूल दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। अगर बढ़िया चीज उसे देनी है तो इसी खाद के माध्यम से ही वो दे पाएगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे आपका परिवर्तन कब होगा? कई ऐसी बातें होती हैं जो हम खुद की खुद नहीं देख पाते। कई बार हमारे कपड़े पर कोई दाग लगा होता है, हमें नहीं दिखता है, कोई दूसरा बता देता है भाई तुम्हारी साड़ी को, तुम्हारी शर्ट को दाग लगा है, तो हम क्या कहते? अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमको तो दिखाई ही नहीं दिया, आपने देखा, बहुत अच्छा किया, भला हो आपका, मैं भी अभी इसको धो लेता हूँ। खुशी होती है ना कोई बताता है तो उसका थैंक्स करते हैं ना। और अगर हमारे जीवन के दाग को कोई बताए तो फिर बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब कपड़े वाला दाग उतारना तो अच्छा समझते हैं, जीवन वाला दाग वो नहीं उतारना अच्छा समझते, तभी तो बुरा लगता है। लेकिन कपड़े को दाग लग गया तो कपड़ा तो बदली हो सकता है, एक कपड़े के बजाय बाजार से दूसरा कपड़ा ले आओ, लेकिन जीवन में जो दाग लगा हो क्या उस जीवन को हम बदल सकते हैं? चलो इसको उतार के दूसरा ले आओ, नहीं ना, उसी को उतारना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। और दाग तो कहीं बाहर से भी लग सकता है, लेकिन जीवन कपड़े का दाग तो चलो दूसरे की गलती से भी लग सकता है, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेवार तो कौन है? हम खुद जिम्मेवार हैं। तो हमको खुद वो मेहनत करके, रगड़ रगड़ करके, ध्यान से देख करके, कई बार तो कपड़ा जब धोते हैं तो दाग दिखता ही नहीं है, तो पूरे कपड़े को बिछा करके अच्छे से ढूंढना पड़ता है, इस कोने में लगा था, ढूंढने में भी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही इसलिए कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, पहले तो मुखड़ा देखना पड़े अच्छे से, कौन सी कमी है, कौन सी बुराई है, कौन सी गलती है, कौन सी आदत है, कौन सा संस्कार है, पहले तो ढूंढना पड़े। और अगर कोई दूसरा ढूंढ के दे दे तो अच्छा है ना, उसने मेरी मेहनत खत्म कर दी। इसलिए ग्लानि अगर कोई करता है तो अच्छा है, उसने मेरा दाग ढूंढ करके दे दिया। अच्छा, कई बार झूठी भी होती, सच्ची नहीं होती, तो उसमें भी बाबा बहुत अच्छी पॉइंट हमको बताते हैं। अगर झूठी भी है तो क्या समझो, इसने मुझे पहले से सावधान कर दिया, है नहीं मेरे में, लेकिन इसने सावधानी दी, इसको भी संभाल के रख दो। जैसे हमारे पास 100 रुपए ही हैं और हमें नहीं चाहिए, पर कोई अगर हमें 100 रुपए और दे दे तो हम क्या कहते हैं, चलो जरूरत तो नहीं थी पर कभी ना कभी काम आएंगे, संभाल के रख लेते। तो मेरे पास अच्छी बात थी, मैं ठीक हूं, पर किसी ने मुझे सावधानी दी तो अच्छा है ना, संभाल के रख लेते हैं, कभी ना कभी ये सावधानी काम आएगी। पैसे से भी ज्यादा कीमती है वो सावधानी जो किसी ने हमको दी, इसलिए उसमें भी मन को ऊपर नीचे नहीं करना है। इसलिए जीवन में जो भी बात आए, अच्छी आए बुरी आए, दोनों ही कल्याणकारी हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे आपको सतयुग में राजा बनना है ना, तो सतयुग में राजा कौन बनेगा, जो जितनी ज्यादा ग्लानि को सहन करेगा। देखो ब्रह्मा बाबा की सबसे ज्यादा ग्लानि हुई। बाबा कहते हैं अभी भी कोई अगर ये कहता है ना ये ब्रह्मा कुमारियां, तो पहले नाम किसका आता है, ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा तो छूटता ही नहीं है, शुरू से लेकर के आखिरी तक ब्रह्मा बाबा का नाम तो सबसे पहले आता है। तो ब्रह्मा बाबा को पद भी सबसे ऊंचा मिलता है। और ब्रह्मा बाबा कहता है मैं जब तक शिव बाबा का बच्चा नहीं बना था, समाज में मेरी बड़ी इज्जत थी, जो भी देखता था कहते थे वो दादा के दर्शन हो गए, वो भाग्य, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन जैसे ही शिव बाबा का बच्चा बना, उल्टी गिनती शुरू हो गई लोगों की। तो हमारे में भी बहुत बाबा के बच्चे हैं, पहले लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, माया के बच्चे थे तो माया बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब प्रभु के बच्चे बने तो क्या हुआ, माया को पसंद आने बंद हो गए। तो माया तो ग्लानि करेगी, आप सुबह जल्दी उठेंगे लोग ग्लानि करेंगे, क्या इसको पड़ी है, 4 बजे उठ के क्या कमाई करेगा, ना सोता है ना सोने देता है, लोग तो बोलेंगे। आप सफेद कपड़े पहनेंगे बोलेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे बोलेंगे, क्या तुम्हारे पास दूसरा कपड़ा नहीं है, क्या बोर नहीं होते तुम सफेद पहन पहन के। कोई बोलेगा क्या ये एक ही रंग रोज पहनते हो बदल बदल के, हमारा तो मन नहीं करता है भाई। कोई बोलेगा कोई ये भी बोलेगा भाई शोक मना रहे हो क्या, सफेद कपड़े पहने रहते हो हमेशा। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर इसका भी हम बच्चों को सिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे सादा जीवन उच्च विचार। दुनिया में तो इसी के कारण सारे झगड़े होते हैं। हमने मैगजीन में एक और छोटी सी बात डाली थी कि एक घर में 2 महिलाएं थी, किसी ने एक में परिवार की किसी शादीवादी में गई तो एक की साड़ी की महिमा कर दी, दूसरी की महिमा ही नहीं की। तो उसने कहा देखो इसको तो बढ़िया साड़ी मिलती है, मेरी साड़ी की किसी ने महिमा ही नहीं की। वो ज्वाइंट फैमिली था, केवल इसी बात के ऊपर घर में आकर के झगड़ा हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। तो दुनिया में सारे झगड़ों का कारण ये रंग बिरंगी चीजें ही। बाबा ने हमको रंग बिरंगी चीजों से मुक्त कर दिया, एक रस अवस्था में और एक रंग में टिका दिया। एक बाबा भी तो सफेद है ना, सफेद बिंदु है ना, तो बाबा ने हमारे तन को भी मन को भी और कपड़ों को भी सफेद कर दिया। तो दुनिया में तो हमारी हर चीज को देख करके लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ टोका टारी करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और नहीं तो सुनो ही नहीं। लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है मस्ती से अपने रास्ते पर चलते जाना। वो जितना बोलें उतना हमको आगे बढ़ने का उमंग आई, ये है फायदा। तो वो देखेंगे अरे हमने तो इनकी चाल को धीमा करने के लिए बोला था, लेकिन हम बोले तो इनकी चाल तेज हो गई, तो बोलना ही बंद कर दो, नहीं तो और ज्यादा आगे जाएंगे, तो वो बोलना ही बंद कर देंगे। बाबा ने अपने बच्चों को ऐसी युक्तियां सिखाई हैं कि हर बात में उनका भला ही भला है, लाभ ही लाभ है। उन युक्तियों को बस बुद्धि में रखने की जरूरत है, अगर युक्ति भूल गई फिर उलझ जाते, लेकिन वो युक्ति हमेशा जेब में पड़ी रहनी चाहिए, वो चाबी की तरह से काम करती है। ये बात आई तो ये चाबी लगानी है, ये वाली बात आई तो ये वाली चाबी लगानी है, बस वो चाबी हमारे पास हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। तो उसमें विजय ही विजय है। ओम शांति।
सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। साथ तेरे है हर पल सुनहरा, ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।